है, एक पेज हम लोगों ने फ्लोट किया है रजिस्ट्रेशन के तौर पे, अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज उसमें डाल दीजिएगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट होगा, आप लोगों को हम लोग और सर्व कर पाएंगे। अपनी कंपनी का एक ब्रोशर है हर एक टेबल पे, जस्ट फॉर रेफरेंस कि हम लोग एग्जैक्टली कौन है, वो ब्रोशर अपने को बताएगा, तो अपने रेफर कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। इस मौसम में एक शिकायत, सुबह सुबह हम लोग जब आए तो अपने एक साथी ने यहाँ पे शिकायत की, यार आप लोग तो आ गए बॉम्बे में, इतनी बारिश हो रही है, लेके क्यों नहीं आए साथ। तो शायद इसका श्रेय हम लोग ले सकते हैं, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इतनी भारी बारिश में अचानक से आई, उसके बावजूद भी आए आप लोग, तो रियली हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू ऑल। थोड़ा मैं फ्लो बता दूं, हम लोग हमारे सामने हमारे सीएमडी और सीएफओ साहब हैं, एंड मिस्टर मटकेतकर एंड मिस्टर बहेती, एंड हम लोग व्हाट विल डू इज आई विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस आवर टीम, मैनेजमेंट टीम टू यू ऑल, और उसके बाद विल रन थ्रू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग। सो गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड I warmly welcome you all, investors, analysts, brokers and members of the investment community to our Investor and Analyst Day in Rajkot. We sincerely appreciate your presence today and look forward to sharing Vikrant's growth energy, business outlook and future opportunities. Joining us today are Mr. Rakesh Ashok Marketkar, our Chairman and Managing Director, whose leadership and vision has guided Vikrant's evolution into a diversified infrastructure EPC company. With a growing presence across power, solar, water and railway infrastructure, ye hame aur aaj presentation mein pata chalega. Also with us we have Mr. Ashish Baheti, our Chief Financial Officer, who oversees the company's financial and strategic vision, thought process and has played a key role in strengthening Vikrant's financial foundation. We are delighted to have both of them with us today to share their insights on the company's journey and recent developments and future growth plans. Without further ado, hum log ek recent interview mein sir aaye the apne CMD saab NDTV ke, usme unhone apne kuch vision layout kiye. Hum log pehle us ko ek baar aapke through run karna chahenge. It will give a lot of insights as to what the company is going to do in future. एक बात मैं आपसे बहुत खुश होकर शेयर करना चाहूंगा कि अपनी जर्नी आईपीओ की राजकोट के कारण सक्सेसफुल, आई वॉन्ट से के कारण बट राजकोट वॉज अ बिग फैक्टर कि अपनी आईपीओ जर्नी शुरू यहां से हुई और सक्सेसफुल में होने में राजकोट का बहुत बड़ा हाथ था। और आज हम जो पहला अपना इन्वेस्टर इंटरेक्शन मुंबई के बाहर कर रहे हैं, इसीलिए हमने राजकोट को चुना कि यहाँ के इन्वेस्टर्स और बाकी फ्रेटर्निटी को अपना हार्टफेल्ट थैंक्स भी कहें, और ये लकी ग्राउंड में हम लोग वापस अपनी स्ट्रैटेजी को आगे लेके चलें। तो उसके पहले मैं एक वीडियो रन करना चाहूंगा आपके सामने, विथ योर परमिशन सर। एक सेकेंड, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो रहा है।
Welcome to KYC. You are watching NDTV Profit with me, Sharad Dubey, where I get you very interesting companies, interesting stories, and maybe interesting alpha as well. But today there is also a very interesting company, but try to guess it. I'm sure you'll try to guess it by the end of the hints. It's a Thane-based EPC player. I'll give you more hints. Try to guess it. Stock is up 47% from March lows itself. Third hint I would like to give you, and that is they recently won a 3500 crore order from Maharashtra state government. Last important one is of course the listing on September 3, 2025, and it's of course backed by market legends Mukul Agarwal and Ashish Kacholia. I'm sure you must be guessing it by now which company I'm talking about. The company in focus is Vikran Engineering. And yes, the company is coming for the second time in KYC after 7 odd months. So we need to see how much of that change has happened since the last time the company came. And why are we calling this company? Of course, the major reason for this is almost a 3500 crore order coming in. Remember, the overall book is only around 5,000, 6,000 crores without this order. So this becomes very important to start our conversation with. The growth outlook, especially on the data center front, what new things the company is trying, we need to figure that out. Also important questions would be the revenue and the EBITDA outlook for the longer term. The new order win, how much incremental benefit starts coming in, order book guidance across the key verticals. They have 3 to 4 important verticals, which I'll explain you in some time. And also the execution and the raw material costing, does that hamper the Q1 numbers? We have seen that in the industry. It's happening. Asset. Versus peer. What's the story here? We need to understand that. And the company has, of course, recently listed. So we need to figure that out as well. Rakesh Markhedkar is the CMD at Vikran Engineering. He will be answering all the questions. But let's try to understand about the company. A company karti kya hai? EPC player, so it's definitely there. They are diversified, play in that. But which segments do they work in? That's what we need to understand. But before we start, EPC means engineering, procurement, construction. This is for the folks who are tracking the sector for the first time. You can note it down and you make it more simplified version for you so that you understand the entire story. Now, the areas they work in, there is power, water, rail, electrification, solar EPC and smart metering. I explained you about data center angle also. I'll come to that in some while. They've completed 45 projects across 14 states. And the next important thing is their supply chain. They have of 3,500 plus vendors. They have stressed about the asset-light business also, and having their in-house engineering and design facility. Current order book, including this larger order book, stands at 9,000 crore rupees, and that's a big jump coming in from the last time they had put in the exchange filings. Currently active in 16 states with 190 plus projects and store locations are there. So this is the entire story we are getting about the company, but backed by large in big investors in the market. This includes, of course, Ashish Kacholia and Mukul Agrawal as well. So there's a good backing coming in. The order announcement, that is very much important. This is almost 3,520 crore worth of order coming in. It's an EPC order, but of course, solar module supply is also there. Let's get into more details about this order win. This is, of course, from Maharashtra state government. And there is a revenue potential also at play. We'd like to get in more details about this order that's there on your screen. The revenue potential, let's look at that number as well. As this is, of course, spread across the next 25 years. This is the 961 megawatt project which is there. And overall, let's just get in the final numbers and then we move ahead for the other segment as well. This is the number, 550 crores rupees. That's the projected revenue coming in. And it's a very high EBITDA margin product if you are tracking this theme as well. But moving on from the order announcements, let's understand how the segment-wise order book looks like. And largely, solar is 49% of that order book coming in. And I had mentioned to you that there are other sectors also which the company follows. This includes the power T&D, which is transmission and distribution. There is water and railway, but of course these are on the lower side. This is how the segment looks if you do the order book breakup. But there is also that B2G element here. PSUs and government, I have separated that. That's what the company has given. PSUs have 18% of the order book coming in, and the government, that stands at roughly 31%. But they have stated that the private sector is still the majority, 51% odd. So that's decent, a kind of exposure, and it's evenly balanced, it seems like. But look at the key clientels. Who are the key clientels for it? We have NTPC, Power Grid, Indian Railways, and SGV. And these are the key clients which the company has. Of course, they have other clients as well. So that means there is an esteemed client list as well. But what we work for the company, let's talk about that. Data center theme is in focus. That is what the street is looking at. Second important thing is the large order win announcements have started coming in post its listing. So this may augur well for the company. Also, they are moving towards the asset light model, which they had mentioned. The street needs some extra time for that. So we'll be focusing on that as well. Also, another important reason is the strong promoter experience. And I'll give you all the history about the promoter and his connections which are there in the ecosystem, and an esteemed client base. These are the reasons why Vikran Engineering, it might work positively, factors playing in for the company. But what may not work, and the industry in which they are in, execution risk will always be there. Of course, there's a little bit of monsoon impact also. FIDI sell-off has been coming in post its IPO coming in, the lock-in expiry coming in. So sell-off is definitely there in the demand supply issues, and high working capital model is also there at times. If you just see the numbers, you'll understand it. But of course, pros are weighing over cons right now after the last 6 months, what has changed. But what has not changed are the KYC ratings where we judge a company, and a minor adjustment is definitely there, because instead of return ratios, it's good to actually get a company and capture them in the order book because of the inherent nature of the business. Also the usual, so the shareholding pattern, street cred, how much money has been made since IPO or during this period. Remember, the period is quite short, so take things with a pinch of salt. Valuations and outlook is also something which we'll get the company in. Let's start with the income statement. What's happening here? In income statement, largely 3-year CAGR numbers we have taken, and for an EPC company, this is a pretty decent number. Anything above 15-20% CAGR shows a little bit of stability, and they have actually put their concentration risk, which is there between government and private, on an evenly balanced space. So net-net, let's just pull out the margins also in the Q4 numbers to show you how things have moved. A little bit of dip is there in the margins, especially in the year-on-year basis, but most of the numbers, overall PAT and even revenue, seems to do a good job. Margins, you see, largely there was an uptick coming in, but now a little bit of, you know, you could say an impact coming in. It's around 14-odd%. We'll try to ask the management, what would be the long-term average margins looking like, and is there any hit to be taken in the first quarter or not? But net-net, prima facie, on a long-term basis, it's a strong thumbs-up as well. Balance sheet, let's get in that as well. And balance sheet, it has been managed properly. And remember, the higher number of the working capital which was there, that was reduced in the IPO. That's where the proceeds were also taken in. And you can see a decent capitalization is there. Cash flows of almost, cash bank balance, sorry, is of 220 crore rupees. And it's evenly managed right now also. So balance sheet also seems strong. So I've given a thumbs up. Cash flow, remember, the business model is such that there might be lumpiness also, especially if you're having a B2G exposure in this industry. So, kabhi paisa aata hai, to kabhi paisa delay hota hai, to kabhi projects hi nahi aate hai. These are the problems which are there, and that is why I want to keep this neutral, even though the net cash flows have improved, but we need to give in more time to judge this company and even the business model. So let's take things with a pinch of salt. I'm going to give this just a neutral rating. Order wins, this is important. I've taken that. The work order of all more than 3500 crore rupees, that is where the street is quite bullish in. But I compared the order books also and the book to bill ratios, how things pan out from FY25 and FY26, and there's a significant jump coming in, almost dhai guna bad gaya hai inka order book pichle ek saal mein. It's of course growing up. Right now it's roughly 9000 crore rupees, but these numbers are comparing FY26, FY25, which the company had given to the exchange filings. So net-net, I'm going to give this a thumbs up as well. But let's talk about shareholding. And my concern comes is on FIs and DIs, the institutional participation which was there IPO ke samay. After that, they...
Barish ke karan thoda issue ho raha hai connectivity ka, is what hotel authority ne hame bataya. Sorry.
Here is a quick overview.
An offloading, you know, of their stake. FI is no major change, but DIs who had entered at around 13-odd%, that has come down to 7-odd%. So a little bit of concern definitely there. But remember, it's still backed by Ashish Kacholia and Mukul Agarwal as well. So this is also a caveat. But net-net, seeing these two flows, I'm going to give this a thumbs down. But apart from shareholding, let's see Street Cred, what has happened. Has the company made money for the investors, especially if they're investors from IPO or maybe in the middle? And we see from the IPO in 2026 so far, there has been, you know, negative returns coming in between 22-24-odd%. But the interest is coming back. There is some smart money HNI buying at these lower levels. And you can see from March lows, stock is up almost 50%. This is the amount to look at. So it's kind of, you know, balancing things out. And there might be some value buying at play. So it's a neutral rating I would like to give when it comes to the Street Cred. Let's pick up how the valuations are functioning. And valuations from the peak has corrected. The lows went as low as 12 times. But then recently, for a company like this at a 21 times P, it is pretty decent. And they are going for some important new age sectors also, which includes data center. That's why the bullishness is coming in from the analysts as well. So I'm going to give this a thumbs up when it comes to the valuations. The outlook, that's what we are focusing on. This is the theme which we need to understand and ask the management more and more about their plans, because this theme gives a good premium potential to a company. Important point, cash flow positive. You know, they want to be the cash positive, you could say, by FY27 end. This is very much important for the working capital ratios. FY31 target, the revenue is at roughly 7500 crore rupees. That's what the management has spoken about. And if you talk about the EBITDA, they are targeting 1000 crore plus. So this is of course a 5-year planning. Profit margin, the long term target, that's expected to range between 8-9%. So these are the important numbers to look at. And the NOP solar project, that revenue which they have won right now, each year they'll make 550 crore rupees. But actually, it's for the entire 25 years. I'm sorry. This is the amount you should be looking at. So outlook remains strong. Let's give you the entire picture about the total KYC ratings which we'll be allocating for this company. Largely, I really like the income statement and balance sheet, and there has been a sharp improvement over the last 7 months of the company and the order book. That is where the bullishness is coming in the market. Shareholding concern is definitely there as FIs and DIs are reducing their stake. Valuations seem decent, and outlook, especially on data center and new large solar project win, is something which the street is liking it. Let's give you the overall rating. It's on the higher side of the average rating. It comes in at roughly 6 out of 8. But let's do a revision of the last time when the company had come. It came on December 2025. We had given it 3 out of 8. But there is a stark improvement in the company. Now it's coming in at 6 out of 8. So Vikran Engineering has actually done really well over the last 7 odd months. And that is the beauty about KYC, where we give you the entire performance of companies getting featured at KYC. But joining us, we'll have the management of the company, Rakesh Markhedkar. He's the CMD of the company. And I'd like to give you some interesting tidbits about him. He has almost 35 years of experience, and he's a turnaround specialist. If you look at it, he had leadership positions in L&T, KI Industries, Bajaj Electricals. So a strong, you could say, history and ecosystem presence. He's the first Indian CEO at Primary Power Projects. It's a UK-based EPC company, and education, of course, from BITS Pilani and IIM Bengaluru as well. Now we are joined in by Rakesh Markhedkar. He's the CMD at Vikran Engineering. Rakesh, it's always a pleasure to have you with us at NDT.
मैनेजमेंट से सुनने के लिए तो यहाँ है, सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं मैनेजमेंट से. तो बिफोर आई इनवाइट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. वैगनार 3870 रोड पे पार्क हो रखी है, वैगनार 3870 रिक्वेस्ट है, वहां से आप प्लीज हटा लीजिए. थैंक यू. आई वुड लाइक टू इनवाइट आर सीएमडी सर मिस्टर मटकेकर टू कम हियर एंड डिलीवर द प्रेजेंटेशन दैट ही हैज इन स्टोर फॉर अस.
Please. Thank you very much. Namaskar, good afternoon. You must be wondering why this gentleman is again here. IPO तो हो गया इनका, अब जरूरत क्या है? तो राजकोट को हम सिर्फ IPO के लिए नहीं जानते, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसा वाला मामला नहीं है. So now that's our primary duty to come and address our investors once again. हम आपसे बात करके गए थे, और मैं बताऊं आपको, मुंबई के अलावा मैं सिर्फ राजकोट गया था, और अभी भी सिर्फ राजकोट में आया हूं आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग कहां खड़े हुए हैं. सितंबर में आईपीओ हुआ था, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने, आपने देखा कि उस आईपीओ को फंड का हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया और बहुत अच्छे ऑर्डर बुक किए. अभी जो हम लोगों का एक्सपांशन किया है थ्रू वर्किंग कैपिटल के थ्रू, हम लोग थोड़ा सा एक बार पुनः थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दे देता हूं. मैं राकेश मरखेड़कर, बिट्स प्लानी, आई एम बेंगलोर आलोक बनास हूं. पिछले 36 साल से इस बिजनेस में हूं. कल ही एक जुलाई 1990 से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था. कल एग्जैक्टली 36 साल पूरे किए अपने कैरियर के. विक्रांत इंजीनियरिंग भले ही सिर्फ 10 साल पुरानी है, ये मैंने 50 साल की उम्र में ये 10 साल पहले कंपनी शुरू की थी. इसके पहले मैं L&T में था. L&T में मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोग्राम के थ्रू टॉप टैलेंट पूल में आया, बहुत अच्छा लर्निंग हुआ. फिर उसके बाद 2003 में 37 साल की उम्र में इंडिया का पहला ब्रिटिश कंपनी में सीईओ बना, और वहां काम करने के बाद यहां इंडिया में 4 कंपनी में सीईओ बना, उनको टर्न अराउंड किया. दिसंबर 15 में मैं बजाज इलेक्ट्रिकल से बाहर आके इस कंपनी की शुरुआत की, और पिछले 10 साल में जो भी हम लोगों ने प्लान किया था वो हमने अचीव किया है, चाहे वो टेक्निकल क्रेडेंशियल हो, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल हो. 5 लोगों की टीम से हमने शुरू किया था, आज 1200 लोगों की टीम है. एक स्टेट मध्य प्रदेश से शुरू किया था, आज 22 स्टेट्स में हम लोग 190 जगह पर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, और पिछले 10 साल में विक्रांत का रिकॉर्ड है, एक भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ है. जब आप लोगों के आशीर्वाद से हमने सेबी में पिछली बार DRHP फाइल की थी, उसमें हमने डिक्लेयर किया था कि एक भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ है। सेबी ने उसका जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने हमको बधाई दी कि यस आपका एक भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ है। 2023 में वर्ल्ड के मिड कॉर्पोरेट सेक्टर में हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में मुझे वर्ल्ड के बेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर का अवार्ड मिला। हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में 300 से ज्यादा वर्ल्ड के बिजनेस लीडर्स की उपस्थिति में, सो ये अचीवमेंट है। और FY 2023, 2024, 2025 का आप देखेंगे कि ईपीसी वर्ल्ड में हमने 15-16, 17.5% इबिट मार्जिन दिया था, हाईएस्ट दिया था। पिछले साल 1.5% का डिप हमने लिया है, उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि जल जीवन मिशन के कुछ वाटर का प्रोजेक्ट के कुछ फंड हमारे डिले हो रहे थे। एज ए प्रूडेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमने वो टेम्परेरीली हमने उसका प्रोविजन लिया है, लेकिन अब वो पैसे आना शुरू हो गए हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में उसको रिवर्स कर देंगे। सो अगर पिछले 8 साल की आप यात्रा देखें विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड की, 10 साल हो गए लेकिन फाइनेंशियल ईयर 8 कंप्लीट किया हमने। CAGR ऑफ टॉप लाइन वी हैव गिवन 35% एंड CAGR ऑफ बॉटम लाइन वी हैव गिवन 42%। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ के साथ साथ हम प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव कर रहे हैं। सो अभी IPO के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बढ़ी है हमारी, और हम पावर के साथ सबस्टेशन ट्रांसमिशन लाइन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सोलर के साथ अभी हम डेटा सेंटर में अच्छे से एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि डेटा सेंटर में क्या होता है, 3 स्तंभ रहते हैं डेटा सेंटर के। एक पावर रहता है सबस्टेशन ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा आपका कैप्टिव जनरेशन रहता है जो कंट्री से पावर देता है लाइक सोलर, वो रहता है मेजर रहता है कूलिंग वाटर। तो हम पहले से ही तीनों जगह में बहुत स्ट्रांगली हैं। हम पावर में हैं सबस्टेशन ट्रांसमिशन लाइन माने कनेक्टिविटी के लिए, दूसरा कैप्टिव रिन्यूएबल हैं यानी कि सोलर में, और तीसरा वाटर में। चूंकि हम तीनों एरिया में हैं और अच्छे से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो डेटा सेंटर इज अवर नेचुरल एक्सपांशन। सो हमने अभी E&Y कंपनी के साथ हमने हैंड होल्डिंग के लिए उनको हमने रजिस्टर्ड किया है, उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं। हम EPC से शुरू करेंगे और ये डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल के साथ साथ डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इंडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमको बहुत इंक्वायरीज आती हैं। तो जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट प्लान जिन 3 सेक्टर में है उसमें हमारी प्रेजेंस है, लाइक रिन्यूएबल पावर में, पावर T&D में और डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर में हमने टीम बना ली है, हम लोग इंक्वायरी हैं, कोट कर रहे हैं। इस साल हम इसी फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस लेके आएंगे डेटा सेंटर का, और 2 साल एग्जीक्यूशन करने के बाद EPC के बाद हम थोड़ा सा और हम एज ए डेवलपर मोड भी हम कोशिश करेंगे। ये हमारी पूरी तैयारी है। अगर आप ट्रेंड देखें विक्रांत का पिछले 9 साल का, हम लोग क्या कि 1.5 साल प्रिपरेशन करते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, समय के पहले प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर ग्रिड जो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है, 765 kV सबस्टेशन और 2 400 kV सबस्टेशन, पिछले 3 साल में तीनों सबस्टेशन हम 2.5 से 3 महीने पहले अहेड ऑफ द शेड्यूल कमीशनिंग करके देते हैं। इस साल भी जून के महीने में एक प्रोजेक्ट हमने 400 kV का 3 महीने पहले कमीशन करके दिया है। इसकी वजह से हमारा जो बिगेस्ट कस्टमर है पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हमको बेस्ट एग्जीक्यूशन कंपनी का अवार्ड पिछले 2 साल से दे रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में जो 75 साल से 100 साल से हैं, लेकिन सिर्फ 10 साल में है हम 7 साल में 765 kV में पहुंचने वाली कंपनी बने, और हम इंडिया की 4थी कंपनी बन गए हैं जो 765 kV AIS में सबस्टेशन में करता है। L&T, KEC और इनके साथ में हम लोग पहुंच गए। पॉजिटिव न्यूज है, ये पॉजिटिव न्यूज दे रहे हैं, इसमें कोई नथिंग इन रॉन्ग इन दैट। सो वी आर कॉम्पिटिंग वेरी स्ट्रांगली, दिस इज वॉट आई मीन ट्राइंग टू टेल यू। राइट. सो इस साल एज फार एज द ग्रोथ इज कंसर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न और ROCE इज कंसर्न, आपने देखा होगा अभी फिगर जो कल का इंटरव्यू है नो योर कंपनी, उन्होंने पूरा R&D करके उन्हें पूरा कल का है ये जो प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने पूरा एनालिसिस किया विक्रांत का अभी तक का और जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं वो हमने आपको शेयर की ताकि हम लोगों का थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन का टाइम कम करके उधर हमने बता दिया दिस इज व्हाट. सो अभी हम बहुत अच्छे ऑर्डर बुक पे हैं, एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ हमने बनाई है, 1200 लोगों की टीम है, मैं बता रहा था 22 राज्यों में है और प्रेजेंटेशन का तो कुछ भी देते रहो लेकिन मैं चाहता हूं आपके प्रत्यक्ष जो वार्तालाप करूं, आपकी कुछ जिज्ञासा है प्रश्न है उनका समाधान करूं तो वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से. प्रेजेंटेशन का हार्ड कॉपी और हमारा ब्रोशर मैंने कंपनी का दे दिया आप लोगों को. सो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इस साल का जो हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है सोलर में एज ए डेवलपर मोड में भी हम गए हैं और आज की तारीख में लगभग 1.4 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स एज ए डेवलपर और एज ए EPC कंपनी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो उसमें NOPL सोलर है 969 मेगावाट का, उसके बाद में हमने और एक और प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लिया है एज ए डेवलपर, उसका भी हम EPC कर रहे हैं. एक NTPC का 400 मेगावाट का चित्रकूट का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और बाकी अभी दूसरे और प्रोजेक्ट कोट कर रहे हैं. तो अभी आज की तारीख में हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन लगभग 60% सोलर में है, 30% पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में है और 10% में हमारा वाटर एंड रेलवे है. तो हमारा पूरा फोकस रहता है कि अच्छा प्रोजेक्ट लेके अच्छा प्रॉफिटेबल लेके आए और उसको एग्जीक्यूट करें और उसी के हमने अभी नए डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. लाइक मैंने आपको बताया डेटा सेंटर में और जो मैं आपको बोल रहा हूं तो पिछले 8 साल का कैगर हमारा 35% रहा है एंड वी विल ट्राई टू मेंटेन. सिंस इस साल हमारा ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, तो हमारा रिजल्ट भी FY 2027 में डबल रहेंगे जो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्शंस दे दिया है. तो 2500 करोड़ हमारा टॉप लाइन रहेगा, विल बी एबल टू मेंटेन बॉटम लाइन जो हमारा अभी तक जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं. और सबसे बड़ा जो थोड़ा सा कंसर्न रहता था इन्वेस्टर्स को, क्योंकि हमारा ग्रोथ बहुत फास्ट हुआ था, हम अभी IPO में वर्किंग कैपिटल लेके आए हैं, ROCE उसका यूटिलाइजेशन अब हो रहा है तो इस साल से ROCE और भी बेटर होगा. जैसे हमने 43% 35% दिया था तो FY 2027 के एंड तक हम लोगों को पॉजिटिव कैश फ्लो होगा फॉर श्योर, क्योंकि जो हमने 1.4 मेगावाट हम डेवलप कर रहे हैं हमको इसी फाइनेंशियल में करना है. उसका आधा भी करते हैं 650 मेगावाट भी करते हैं तो हम बहुत कैश सरप्लस में रहेंगे. दिस इज नॉन फैक्ट जो इन्वेस्टर्स ने भी अभी आपने सुना उनका सबका एनालिसिस है. तो ये थोड़ा सा हमने अपने बारे में बताया आपको. अगर आपके कुछ इसके बाद मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे CFO मिस्टर आशीष भाई थी आके आपको फाइनेंशियल के बारे में और डिटेलिंग बताएं, उसके बाद में जो भी आपके जिज्ञासा होगी प्रश्न होंगे वील बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल दोज थिंग्स. थैंक यू वेरी मच. आई एम रियली हैप्पी टू सी द सच ए बिग गैदरिंग टूडे, इतना इंथ्यूजियाजम दिस इज फॉर राजकोट इज नॉन फॉर. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी. मुझे तो मन में प्रश्न होता है कि राजकोट वाले पूछेंगे आप क्यों आए हो आप, तो दिस इज वॉट इज आई लव मीटिंग पीपल. आई कनेक्ट बहुत इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी रहता है, इसलिए हम आपसे मिलने के लिए यहां पर आए. थैंक यू वेरी मच. आई विल बी कमिंग अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. आशीष प्लीज.
थैंक यू सर. एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, आई रिक्वेस्ट आशीष टू क्विकली गो थ्रू द प्रेजेंटेशन. जो सारी बातें बताई हैं वो एक नंबर टर्म्स में पिक्चर टर्म्स में अपने सामने आएंगी एंड देन ही विल ऑल्सो टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स एंड देन हम लोग ओपन करेंगे फोरम फॉर Q&A. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सिंस वी आर इन द साइलेंट पीरियड तो क्वार्टर के बारे में कुछ भी बात नहीं कर पाएंगे हमें, तो प्लीज डू नॉट आस्क अस क्वेश्चंस रिगार्डिंग द क्वार्टर. आशीष थैंक यू.
थैंक यू अमित जी. So, and thank you once again, all of you, and this weather you all have came and to meet us, it's really great to see you all. So, ये presentation wise, we can just go through it fast, very quickly. So, anyways, we have already seen how the journey has started. Actually, this company in 2015 onwards. Rakesh sir, when he left Bajaj Electrical, where he was working as a president and CEO in 2015, he left that company and started this journey here. Since then, we have started taking some projects in power and gradually moved to railway electrification, then moved to water projects, and now recently in last year, we have also started taking renewable power projects, mainly into solar. And in 2026, we have also acquired a company where we are working as a developer for almost now of 1 gigawatt of solar projects. With that, our qualification will be much higher. Anyways, we are already qualified in 765 kV for power transmission distribution lines as well as in substations. Apart from that, the solar qualification of 1 gigawatt will be also helping us in becoming a very big and renowned company in this space. As you know, we have pan-India presence. We have worked in 22 states across India. A very vast supplier and vendor networks we have. We have more than 3,500 vendors and contractors who are registered in SAP system with us, who are working with us. And across India, it's our specialization that we can cater to the requirement of any material or any labor requirement at any corner of India. In terms of order book, as we have just seen, we have total order book as on date of 6,400 crore plus. And with the overall promoter and his brother, Mr. Avinash Marketkar, both of them put together, we have about 71 years of experience with us in this industry. These are our core verticals in power transmission, solar, EPC, as we have said. We have done various projects. We have completed 765 kV projects also and delivered to our client like PGCIL. We are also working with NTPC. There are some key projects of solar where we have just started those solar projects. We have taken over started this project in January this year, in January 26th, and within 3 months we have started delivering those projects of 5 megawatt, 10 megawatt, and then now almost about 20 megawatt is already in operational, and we are supplying the power to government, and billing has already started. So that way we are very quickly turning it around. In terms of infrastructure, water infrastructure, we are working for MP, UP and Chhattisgarh states. Apart from that, we have worked various projects for railway infrastructure. We have got various recognition also from our clients on railway and PGCIL. PGCIL even has recognized Vikran as a known for execution, and they have also recognized us for a good execution company, and they have given us award also for execution. So this is our pan-India presence. As you can see, we are mainly present in the MP, Maharashtra, UP, Bihar. Apart from that, there are other states also where we have worked. In terms of NOPL Solar, which is our recent acquisition, where Vikran has taken over 100% stake in this company, we are working as an EPC also for developing 969 megawatt of solar project. The PPA rate for this particular project is very good. It is north of 3.07 rupees per unit, which in the current scenario, it's very good rate. Also, these projects are, whatever we are developing is all on non-DCR panels, so there is no issue in terms of availability of the material. And the material, as compared to DCR, it is much cost-effective. For the long-term value creation, I'll just give you a brief about once this project is developed, the overall annual revenue potential for this particular project from 969 megawatt. We are estimating it as around 525 crore plus with the EBITDA margin of about 85% to 88%. Almost 80% of land is already we have leased out. Also, we have identified most of the suppliers and the installation partners are identified. We have signed PPA for 25 years. The PPA is signed by MSEDCL. And apart from non-DCR panels as well as 3.07 rate of PPA, this particular company is also having eligible, it's also eligible for subsidy of 1.05 crore per megawatt, which amounts to almost 1,000 crore plus. So that's how this project will actually help the company in turning around and giving a very good opportunity for creating a good asset. These are just basic financial highlights. As we already discussed, 6,400 crore plus is the total order book as of now. You can see it, March 25, it was about 2,000 crore, which has grown to 5,200 crore, and now it is 6,400 crore. So the way Vikrant is growing its order book, definitely the similar way we are executing also, and we'll try to improve our execution as well as deliveries also in the similar line. And with the current order mix, we are confident to that we will be able to maintain our profitability which was there in last 2-3 years. In the below slide, you can see how the revenue from 520 crore has grown to 700, 900, and now last year we have closed at 1,250 crore approximately. The EBITDA margin is consistent. PAT margin is also quite good in the range of 8 to 10%. These figures, anyways, you can go through on our website also. This is just for your reference purpose. We have kept in case you have any specific query on that. So overall, would like to give a brief on how way forward, what we are looking at as far as the strategy is concerned. So yes, we are having a good qualification in power as well as solar. So these will remain in our focus, where we will be trying to get new projects in and around this sector. Apart from that, in new geographies, we are trying to see some projects either in African continent or in Middle East region. But there also we are going very slow and cautious. Wherever there are good projects available, where the financing arrangements are clearly known, the margins are good, then only we will take for international projects. As far as the EPC project in solar side, that will remain in our focus area. As Sir has mentioned, that we always work in similar way where the government focus is, and since our government focus is more towards renewable and power transmission line and data center, so those are our key areas where we want to focus in going forward in coming years. And apart from that, yes, there are other projects where like high speed rail infrastructure or any specific government-led power and water infrastructure projects, there also we are eligible, and we will look for some good opportunities on those areas. These are our way ahead, you can say, in next 3-4 years, how Vikrant would like to cater to the requirements of Indian growing Indian infrastructure things. This is all from my side. Thank you, and now I think we will open the floor for questions.
Thank you, Ashish, and thank you, sir, for this lovely presentation. Can we switch on the lights, please? Lights, sorry. अब request रहेगी कि आप लोग question पूछिए, और सर ने बोला है जितने तगड़े questions होंगे उतना मजा आएगा answer करने में. So please feel free to ask questions. We have a microphone. Anybody would like to ask a question, if you can raise your hand, हम लोग microphone है हमारे पास. So पहला question यहाँ है and then पीछे है.
Sir, how much you have been deviated from the past result as compared to whatever you made projections at the time of IPO? What is the difference as of now? How much you have achieved, what you have projected?
In terms of overall, what we projected was our revenue was around 1300 to 1500, but the actual revenue what we have able to achieve was 1250 crore. The profitability wise, also around 92% we have achieved from the last time when we met. So yes, there were in Q4 because of the situation worldwide, there were some impact of that, but overall we feel that we were able to meet the overall, you can say, target what we have taken. Whatever is balanced, definitely going forward, we have all these orders books available and we are executing it to meet the overall growth plan in long term.
What about, I mean, there must be some internal accruals. What is the at present general reserve of your company?
In terms of general reserves, we have a total net worth of about 1250. Hello, yeah. So 50 odd crores the net worth we have. In terms of cash and cash balance, we have about 150 crores of cash and bank balance.
So now you can speak, I mean, what is your vision down the line, 3 years to 5 years? Where you want to see your company?
So thank you. Very strong question and very good question you asked. See, if you see, I'm repeating my own earlier statement which I stated. If you see, अभी तक हमने 8 साल का जो growth दिया है, उसमें CAGR is 35% है. अभी चूंकि इस साल हमारे पास order book बहुत अच्छा है, तो हम इस साल double करेंगे. 1250 से इस बार 2500 करने वाले हैं इस साल हम FY27 में. उसके बाद वील बी मेंटेनिंग जो हमारा 35% का ग्रोथ है उसको भी अगर मेंटेन करते हैं तो हमने FY31 का प्लान किया है 7500 करोड़ का जो नेचुरल. दिस इज द मिनिमम एश्योर्ड व्हाट अवर इंटरनल प्लान इज देयर. और अभी ग्रोथ एरिया में जो आप बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में एक चीज बताता हूं. आज आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने से न्यूज चल रही है कि भाई सोलर का प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है, लेकिन उसको एवैक्यूएशन का जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कम पड़ रहा है ना, उसकी वजह से देयर इज अ लॉसेस इन द सोलर पावर जनरेशन. तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा काम आने वाला है, चल ही रहा है माने गवर्नमेंट का, नंबर वन. नंबर टू, जो करंट का 280 गीगावाट के लगभग जो आज बिजली उत्पादन है, ये 2040 तक 1200 गीगावाट रिक्वायरमेंट रहेगी भारत की. तो इसका मतलब अभी से लेके 2040 तक का इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन लाइन सबस्टेशन का काम होगा, और जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन जो लगभग 50 साल पुराना है, इसमें भी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड पूरा चेंज होने वाला है. इन शॉर्ट कहने का मतलब है पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा कोर सेक्टर है उसमें हम पूरा फोकस रहेंगे. उसके अलावा जनरेशन में हम लोग सोलर और रिन्यूएबल रिलेटेड एरिया में हम कंटिन्यूस काम करते रहेंगे, और न्यू एरिया जिसे हम डेटा सेंटर जो हमारा नेचुरल हमारा ग्रोथ उसमें है, हमने टाई अप कर रहे हैं. मेरा बेटा, छोटा बेटा जो है डायरेक्टर विपुल मरखेड़कर अभी यूएस में बैठा है. वी आर टॉकिंग टू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द डेटा सेंटर. पिछले 15 दिन से चल रहा है हमारा. E&Y के साथ हमने ऑलरेडी करार कर लिया है टू हैंड होल्ड अस इन फॉर द डेटा सेंटर. हमने टीम बना ली है. इन शॉर्ट अभी बिजनेस की कमी नहीं रहेगी. हमारी 1200 लोगों की टीम, हमने जस्ट डबल करते जा रहे हैं हमारी टीम. हमारा इंटरनल कॉम्पिटेंस हम बढ़ा रहे हैं. अभी हमारा वर्किंग कैपिटल आईपीओ के थ्रू बढ़ गया है, और जिस हिसाब से हम जनरेशन में जा रहे हैं, जो नया प्रोजेक्ट हमने अभी एक्वायर किया है जो एनओपीएल सोलर, उसकी एक विशेषता बताता हूं. जो हम अगले 12 महीने में इसको कमीशन करेंगे, तो इस अकेले प्रोजेक्ट की वजह से हमारा 550 करोड़ रेवेन्यू हर साल आएगा सिर्फ एक इस प्रोजेक्ट से, नंबर वन. और इस एक प्रोजेक्ट की वजह से हमारा एबिटा मार्जिन 450 करोड़ आएगा हर साल 25 साल तक के लिए. तो ये इतना स्ट्रांगली हम लोग, ये टर्निंग द टेबल हो जाएगा एक सिंगल प्रोजेक्ट फॉर अस. So this is going to give a big confidence internally and externally. So apart from our EPC and ISM, हम लोगों के आगे की जो हम लोगों की जो financial capability रहेगी, technical capability रहेगी, उससे हमको और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और worldwide financial institute हमको विक्रांत को हैंड होल्डिंग के लिए तैयार रहेंगे.
अभी टीएनडी लॉस कितना हो रहा है और अभी आपको कहां पे लेके जाना है?
सी अभी तो टीएनडी ऑन एन एवरेज 45% से 17-18% पे लेके आए. अभी 12% टारगेट कर रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन
फिर भी बहुत ज्यादा है.
हाँ, फिर भी ज्यादा है, लेकिन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि काम हो रहा है. गवर्नमेंट सीरियसली अभी काम कर रही है, प्रोजेक्शंस बहुत हैं. अभी तो कंपनियों को यह है कि इतनी इंक्वायरी आती है, हम लोग उसको कोट नहीं कर पाते. प्राइवेट में आप देखिए कि इंडिया में भी जो प्राइवेट सेक्टर जो लगभग 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है पावर टीएनडी में, हम वहां की उनकी इंक्वायरी को नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग काम ही गवर्नमेंट का पावरग्रिड और एनटीपीसी का ही काफी काम है. और जो हमने करंट ऑर्डर बुक बताया 6,800 करोड़, उसके अलावा 3,000 करोड़ में हम L1 है, लोएस्ट बिडर विद बेटर मार्जिन, जिसका हमको 30 से 45 दिन के अंदर ऑर्डर आएगा. तो एज फार एज द ऑर्डर इज कंसर्न, इस साल हमारा जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो हमारे है उसके अलावा हम जो 3,000 करोड़ जो L1 बोल रहे हैं वो हम आएगा ही आएगा. अगले साल का जो हमारी जो डिमांड है 9,000 करोड़ का हमारा FY 2028 में ऑर्डर बुक का हमारा प्लान है. थैंक यू.
हेलो.
यस प्लीज.
मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सेल्फ इवेल्युएशन जैसा है.
या
कि व्हाई वी आर लैकिंग और वेयर वी आर लैकिंग टू कन्विंस द मार्केट्स अबाउट अवर ग्रोथ स्टोरी.
प्रोबेबली दिस इज द रीजन. मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों ने रियलाइज किया कि सिर्फ अच्छे रिजल्ट देना ही पर्याप्त नहीं है. मार्केट को हम लोग अभी आईपीओ के बाद इतना फोकस हो गए थे रिजल्ट देने में, काम करने में, ऑर्डर बुक में, तो हम लोगों ने एक दो हम फेल तो नहीं बोल सकते. हम लोगों ने प्रॉपर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया इन्वेस्टर्स को, वन ऑन वन सेशन नहीं किए, और इसकी वजह से प्रॉब्ली हम लोग. लेकिन अभी जिस हिसाब से हम लोगों का जो टर्निंग द टेबल वाले एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिस हिसाब से हम कंटिन्यूस ऑर्डर बुक किया है, अच्छे प्रॉफिटेबल ऑर्डर बुक किया है, जो हमारा प्लान है कि हम जो नेट कैश फ्लो एकदम पॉजिटिव करने वाले हैं, वो श्योरिटी सबको दिखने लगी इन्वेस्टर को, तो वो अभी हम एजुकेशन बोलो या उनका कम्युनिकेशन इंप्रूविंग नाउ. थैंक यू.
आई हैव टू क्वेश्चंस.
या प्लीज. हाँ
सर, वन इज ऑन द बिजनेस ऑन डेटा सेंटर. आप बोल रहे हैं कि यू आर गेटिंग इनटू डेटा सेंटर. व्हाट एग्जैक्टली इज इट, जस्ट मेकिंग द डेटा सेंटर एंड हैंडिंग ओवर, और यू गोइंग टू ऑपरेट द डेटा सेंटर ऑल्सो विद द फुल सिस्टम?
मैं बताता हूँ सर, अभी हम लोग क्या करेंगे, शुरू के 1.5-2 साल हम ईपीसी प्रोजेक्ट डेटा सेंटर के लेंगे. सो उससे क्या होगा कि हमारा डेटा सेंटर का कॉम्पिटेंस बिल्डर होगा, हमारे ऐसे टीम बिल्डिंग होगी, कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि डेटा सेंटर में जैसे इन प्रोजेक्ट में टाइमलाइन इंपॉर्टेंट रहता है, वहां पर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. एक दिन का भी वो डिले में उनका अरबों का लॉस होता है, तो वो इतना कॉम्पिटेंस पहले डेवलप करना है इंटरनली, जो हम कर रहे हैं अभी E&RI को, इसीलिए हमने असाइन किया. बहुत कॉस्टली, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है. हम टीम बिल्ड शुरू कर दिए हैं और अभी हम पहले ईपीसी में जाएंगे 1.5-2 साल, जब हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि डेटा सेंटर का मार्जिन जबरदस्त है. ऑन एन एवरेज जो अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूं, 25-30% मिनिमम मार्जिन पे अभी चल रहे हैं. मैं तो वर्स्ट सिचुएशन की बात बता रहा हूं, तो क्योंकि हमने अभी तक मार्जिन पे काम किया है, इसीलिए प्रिसाइजली डेटा सेंटर. तो पहले 1.5 साल ईपीसी में काम करेंगे, उस बिजनेस को उसकी डिटेलिंग में समझेंगे, उस पर कॉम्पिटेंस लेंगे, फिर हम एज ए डेवलपर मोड में कुछ फाइनेंशियल टाई अप करके, टेक्नोलॉजी टाई अप करके फिर जाएंगे. उसकी प्रिपरेशन हमने शुरू कर दी. वी आर टॉकिंग विच आई कांट रिवेल नाउ नेम. वी आर टॉकिंग द अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, माई सन ही इज सिटिंग इन US फॉर दिस पर्पज फॉर लास्ट 15 डेज. सो हम लोग उसमें बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं और पिछले 9 साल में देखेंगे जो भी हमने प्लान किया है हर साल, कि इस साल 220 kV लेवल जाना है, 400 में जाना है, 765 में जाना है, वाटर में जाना है, रिन्यूएबल में जाना है, जो हमने प्लान किया है, आईपीओ में जाना है 10वें साल, जो हमने प्लान किया अभी तक सक्सेसफुल मिला है हमको. उसका रिजल्ट है, हमने टीम काफी अच्छी बनाई है.
सेकेंड क्वेश्चन फाइनेंशियल पे है, मतलब योर टर्नओवर इज 1200 करोड़, उसमें 1000 करोड़ तो रिसीवेबल खड़ा है और 750 करोड़ पेएबल है. हाउ डज दैट इकोनॉमिक्स वर्क, मतलब पेमेंट नहीं कर रहे आप, ले भी नहीं रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट अ वन ईयर रिसीवेबल, दैट इज हाउ इज दैट.
Yeah, so if you see almost 55% of our turnover, more than 50% of turnover comes in Q4. That is the reason always in March you will find that our receivable and payables are on higher side, because those are February, March is the main time where we are getting the delivery of materials also quickly, also we are installing it, delivering it to client. So because of that's the one of the main reason where you'll find the payable and receivables are on a higher side. Apart from that, one more reason for this is generally retention remains for a longer period in infrastructure in general. So that is one you can say is a reason where whenever you're working with especially the government clients, those retentions will take time because of the tender condition. Every bill they'll deduct 10% and it will be paid after the default liability period is completed. So वहाँ पे करीब around 200-205 करोड़ के आसपास का retention है. और balance आप देखेंगे तो ये major amount है, जो कि Q4 itself is about 650 करोड़ का turnover है. So those are the two reasons which are there. And this definitely, once we are becoming more towards like solar projects we are developing, we are the only, holding that company and we are on it as a working as an EPC. With that, definitely these things will be improved because we are not dependent on government budget for that. Q1 mein budget nahi hai, toh aap kaam nahi kar pa rahe ho. Woh sare issues thode se kam ho jayenge in cheezon mein. Solar ka turnaround bhi fast hai. What we have done is like after starting the project, 3 months mein project complete karke aur deliver karna start kar diya. With that, definitely going forward, we see that this skewedness will be less and we will improve on our overall receivable portion. Yes. Yes, so
we cannot talk about the quarter. I'm really sorry.
We are not talking about.
पूरे साल का गाइडेंस दे सकते हैं, but
not about quarter. What we are saying is, yes, we are collecting it normally. There is no issues as far as receivables are concerned.
Sir, I have two questions. One is on strategy parts. Last entire year there was no order book from solar. This year suddenly it has come to 54%. So it's a single project or?
Let me brief you. जैसे मैंने बताया था, what we do, the विक्रांत की आप स्टडी करेंगे ना, हम 1.5 साल प्रिपरेशन करते हैं किसी भी नई सेक्टर में आने के पहले. जैसा अभी डेटा सेंटर में कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 6 महीने और प्रिपरेशन करेंगे. और प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होती है, टीम बिल्डिंग वगैरह. तो जो सोलर की अपन जो बात कर रहे हैं, इसका भी पिछले IPO में हमने हिंट दिया था, वी आर प्रिपेयरिंग. तो प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है, प्री क्वालिफिकेशन चेक करना, कोड करना शुरू कर देना, टीम बना लेना, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टीम बना देना, जो इंपॉर्टेंट रहता है, और उसके लिए जो भी हमको एसोसिएट टाइप करना पड़ते हैं वो कर लेना. तो ये इसके प्रिपरेशन तो पहले से चल रही थी, नंबर वन. नंबर टू, ये हम लोगों ने इसका क्रियान्वयन, हमने IPO के तुरंत बाद सितंबर में हमारा IPO आया, कॉन्फिडेंस था, पर्पज ही वही था कि हम IPO का पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए लेके आए थे कि अच्छे प्रॉफिटेबल ऑर्डर बुक करके आगे बढ़ना है. तो उसी संदर्भ में हमने जो प्रिपरेशन चल रही थी, सोलर को चुना. पहला ऑर्डर हम NTPC से लेके आए 400 मेगावाट का, वर्चुअली इट इज डिसाइड 500 मेगावाट. वो NTPC से डायरेक्ट हमारा ऑर्डर आया है अपनी खुद की बलबूते पे, बिना किसी जॉइंट वेंचर के, क्योंकि पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे विद अ बेटर मार्जिन. NTPC के जितने भी प्रोजेक्ट अवार्ड हुए हैं इंडिया में पिछले 2 साल से, सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट विक्रांत ने लिया है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. नंबर टू, उसके बाद है एज ए डेवलपर, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में हमने खुद एज ए विक्रांत इंजीनियरिंग 45 मेगावाट डेवलपर लिया है. और तीसरा जो NOPL सोलर वाला जो हमने लिया है, इसके एक छोटा सा आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप नए हैं और इतना जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सडनली कैसे जंप हुआ, उसका रीजन क्या है कि एग्जीक्यूशन में हमने पूरा फोकस किया हुआ है. एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, 969 मेगावाट जो हमने अभी रिसेंट लिया है, 2.5 महीने की प्रोग्रेस बताता हूं आपको. 969 मेगावाट में से लैंड फाइनलाइज कर दिया हमने 904 मेगावाट का, जहां पे लोगों को दिक्कत आती है। माने 969 मेगावाट में से लैंड हमारा फाइनल, माने पूरा कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन लैंड अपने हाथ में ले लिया 904 मेगावाट का। कनेक्टिविटी 670 मेगावाट की हमारी रेडी है। 51 लोकेशंस आउट ऑफ 152, लगभग 275 मेगावाट पे हम काम कर रहे हैं। कंपनियां यहां डेढ़ डेढ़ साल से काम नहीं कर पा रही थी, बहुत सी व्यवधान की वजह से। विक्रांत इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके गए और हमें छापा मारी, यूज करता हूं मैं हमेशा वर्ड्स, तुरंत टीम उतारते हैं विद इन 7-10 डेज। अभी हम 51 लोकेशंस पे 152 लोकेशंस में हमने क्लस्टर्स बनाए हैं, इस क्लस्टर में पूरी टीम उतारी है, तो उसमें 275 मेगावाट पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें से 165 मेगावाट वेरी स्ट्रांग वेरी एडवांस स्टेज में है। हमने 45 मेगावाट ऑलरेडी कमीशन कर दिया, उसका बिलिंग और पैसा लाना शुरू कर दिया, और इस महीने में हमारा जुलाई में अनदर 100 मेगावाट हमारा टारगेट है, और दिसंबर तक 650 मेगावाट टारगेट कर रहे हैं। इतना फास्ट एग्जीक्यूशन आज तक सोलर में मैं आई एम नॉट क्लेमिंग, लेकिन मैंने नहीं देखा है। सो बहुत अच्छे से हम लोग जा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूशन जो हमारी मेजर स्ट्रेंथ है, इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है कि ये साल विक्रांत के लिए टर्निंग द टेबल होगा। रिवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी डबल तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जो हम बेस तैयार कर रहे हैं आगे के सालों के लिए, ये फाइनेंशियल ईयर उसको बेस रेफरेंस रहेगा बहुत स्ट्रांग उसके लिए।
ये रिसीवेबल्स है, उसमें से हाउ मेनी पोर्शन इज गवर्नमेंट रिसीवेबल पेंडिंग? फाइनेंशियल रिसीवेबल्स में हाउ मेनी पोर्शन गवर्नमेंट कंपनी पेंडिंग?
सो फॉर दिस रिसीवेबल अप्रोक्सीमेटली यू कैन से अराउंड 60% इज फ्रॉम गवर्नमेंट साइड एंड बैलेंस 40% इज फ्रॉम द अदर पार्टीज वेयर वी आर वर्किंग फॉर।
ओके, सो व्हाई प्राइवेट सेक्टर इज सो मच डिले? गवर्नमेंट वी कैन अंडरस्टैंड, बट प्राइवेट तो
इट्स नॉट अबाउट डिले, इट्स आउटस्टैंडिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग, नॉर्मल आउटस्टैंडिंग, देयर आर नो डिलेज।
थैंक यू। सर जो आप पेएबल की बात हुई आपने एक्सप्लेन किया, तो लुक पेएबल जो डे रेशियो है वो 596 है, वो हाई है, तो क्या आप पेमेंट नहीं कर सकते वेंडर को?
हेलो, या जैसे मैंने बताया, इसमें से आप अगर नंबर वाइज देखेंगे तो हाई दिखता है, लेकिन दोनों चीजें हैं जो मैंने पहले रिसीवेबल के लिए भी एक्सप्लेन किया, सेम पेएबल के लिए भी है। मेजोरिटी ऑफ दीज पेएबल्स आर फॉर द लास्ट क्वार्टर, जहां पे कि हमने
सर आपकी साइकिल 596 डे की है,
बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें आप देखेंगे बिकॉज आप डेज कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप लास्ट क्वार्टर का आप रिजल्ट देखेंगे तो 6650 करोड़ का टर्नओवर जस्ट लास्ट क्वार्टर का ही है, विच इज मोर देन 50% ऑफ योर ओवरऑल ईयर्स टर्नओवर। तो मार्च के जो आउटस्टैंडिंग पेएबल हैं और मार्च के जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल हैं, मार्च क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, Q4 की बात कर रहा हूं, वो ही मेजर वहां पे बैठे हुए बैलेंस शीट में, लेकिन बिकॉज वहां पे 55% आ रहा है आपका Q4 में ही, इसके लिए वो ऑलवेज हाई दिखते हैं। दूसरी चीज, जैसे रिटेंशन हमारा क्लाइंट रोकता है, वैसे ही हम भी अपने पे कुछ रिटेंशन पोर्शन रोक के रखते हैं कि भाई जब हमारा डीएलपी कंप्लीट होगा बैक टू बैक बेसिस पे, एस आर नो डिले आर इट इज पेइंग टू आर वेंडर्स।
सर जो आपका एनपी बढ़ा है वो इसमें 16 करोड़ रुपीस अदर इनकम से है, तो इट इज नॉट कोर बिजनेस इनकम है।
ये जो अदर इनकम आई है दैट इज मेनली जो आईपीओ फंड्स था वो हम जब बैंक में रखते हैं उसका जो इंटरेस्ट है 13 करोड़ तो उसी का ही है, बाकी जो नॉर्मली स्क्रैप से
77 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर का, 26 का 92 करोड़ है, इसमें 16 करोड़ निकाल दे तो इसमें ग्रोथ तो आया नहीं प्रॉफिट में।
सो व्हाट वी आर सेइंग इज ग्रोथ, जैसे सर ने बताया इस साल हमने 20 करोड़ के आसपास का प्रोविजन लिया है विच इज रिलेटेड टू द रिसीवेबल्स फ्रॉम मेनली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जो कि थोड़ा सा डिले हुआ है,
But वो जो provision reverse होगा आप इसे profitability improve हो जाएगा. Whatever projects we are having as of now are with the similar margins or comfortable margins हैं उसमें. उसमें margins में कोई dip नहीं है.
सर NOPL का जो acquisition किया है आपने, वो आप पहले इसके लिए काम कर रहे थे, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट थे इसका था, तो आपका क्या इंटरेस्ट था पहले? इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और क्या है इसमें?
सो इसमें कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है. NOPL हमने जिस भी कंपनी से खरीदा है उसमें हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है. और ये एज अ ईपीसी कंपनी हमने जब टेक ओवर दैट दिस प्रोजेक्ट इज वेरी गुड वी स्टार्टेड डिस्कशन. हेलो, या वी आर स्टार्टिंग डिस्कशन अबाउट द टेकिंग ओवर एंड देन डील हैपन्स दैट वे.
कौन सा वैल्यूएशन से एक्वायर किया?
So all those things are we already given in the exchange.
Thank you.
One last piche. हाँ, एकदम पीछे. One last question. उसके बाद we'll break for lunch. और lunch में हम लोग informally sir available रहेंगे और हम लोग बात कर पाएंगे.
सर, आपका जो NOPL कंपनी है दैट इज ए न्यूली कंपनी 2024-2025 और उसका पेड अप कैपिटल वगैरह देखेंगे तो एकदम कम है वो कंपनी का. तो वो कंपनी के पास 3,000 करोड़ का ऑर्डर बुक आपके एंड वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और 2,000 करोड़ का एक कंपनी का ऑर्डर बुक भी कैंसिल हुआ था.
सेकेंड क्वेश्चन सुनाई नहीं आया. एक तो आपने NOPL का बोला आपका कैपिटल कम है, दूसरा?
हाँ, और आपका एक 2,000 करोड़ का ऑर्डर बुक कैंसिल हुआ इन लास्ट फाइनेंशियल एक्सप्लेनेशन हो गया आप.
ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि ये कैंसिलेशन जो है पहले उसको ले लेते हैं बिकॉज दैट इज फर्स्ट इवेंट हैपन. सो वेन वी वर लुकिंग एट दीज सोलर प्रोजेक्ट आफ्टर IPO वी हैव एनालाइज वन प्रोजेक्ट फ्रॉम कार्बन माइनस. Apart from that, this NOPL project also we were looking at the similar time. Both were in Maharashtra. The first project we had taken was having the overall facility. We were working as an EPC contractor and they were supposed to provide us the land and the clarity on the... we have worked almost for 3 months on that particular project, but we were not getting the clarity or we couldn't able to start the commissioning. Meanwhile, we could get this second order, which is NOPL Solar, as an EPC, again for almost 2,000. So instead of that, we have started this project, and because there was no clarity on that particular land and availability of the financial closure, we have moved our focus on this particular project. That is first. Second, NOPL is a SPV. The overall, whenever as a company, when we bid for any particular project, what is beneficial that you make for that particular project. So whoever is the initial bidder might have all the qualification and they have bid for this particular tender. Once the tender is allocated to them, then they have made this SPV and we have acquired that SPV with the PPA already assigned to that. That's why you are looking at the capital. Definitely it is very small, but it is not the case for the developer or the bidder. Similar way, we have also bidded as a Vikran. We have bidded in MP Urja for 45 megawatt. We have won the award based on our qualification, but now we have made our SPV as a 100% subsidiary and we are developing that particular project in that company. The capital of that company also will be about 10 lakh, but we are developing a 45 megawatt project there. So this is a general practice how we work in infrastructure sector.
Okay, one more thing. आपका रेलवे बोर्ड ने आपको बैन किया था 2 साल के लिए, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है?
सो दैट वॉज बिफोर IPO वी हैव गिवन ऑल द डिटेल्स इन प्रोस्पेक्ट. सो वेयर इट हैज हैपन्ड, देयर वाज केस विच इज गोइंग ऑन एंड बेस्ड ऑन दैट रेलवे हैज टेकन अ डिसीजन. वी हैव ऑल्सो गोन इन टू कोर्ट एंड वी हैव got a stay order against that ban. After that also we have completed for railway. Even currently also we are working for railway. There are no issues on that.
Thank you very much. And it was really an insightful kind of a question answer session, sir. Hope you enjoyed the question as you asked for. So thank you, team Rajkot. You stood, to our expectations, and thank you for coming here. Abhi hum log will break for lunch. Lunch is served. Samne soup hai, idhar lunch hai. Jain bhi available hai, and sir bhi available hai. The team management is also available for informal talks, please. Thank you. And let's clap for you. Let's clap for ourselves. Yeah. Thank you.